ॐ शांति ॐ शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चों में अमीर कौन है और गरीब कौन है। नॉर्मली बाबा हमेशा बताते हैं कन्याएं माताएं गरीब हैं, बहुत कुछ सहन किया हुआ है, बंधन है, बहुत बंधन भी देखे हुए हैं। लेकिन आज बाबा ने कहा अमीर कौन है और गरीब कौन है। बाबा ने कहा कि जो बच्चे ज्ञान रतन धारण करते हैं वे अमीर बच्चे हैं, और जो ज्ञान रत्नों को धारण नहीं करते हैं वे गरीब बच्चे हैं। तो आज बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है, ज्ञान रत्नों को, ज्ञान रत्नों से अपने को भरपूर करना है। दूसरी बात बाबा ने कही कि कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा कि फेल होने के बाद भी बैठ नहीं जाना है, ठहर नहीं जाना है, बाबा को बताओ, बाबा उसकी दवा देंगे, फिर आप खड़े होकर, खड़े होना मीन्स फिर से पुरुषार्थ करने लग जाएंगे। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कोई पांचवी मंजिल से गिरता है तो कान की चोट लगती है, बहुत बड़ी चोट है, कोई दूसरी मंजिल से या तीसरी मंजिल से गिरता है तो कम चोट लगती है। तो बाबा ने कहा ये जो पहली बड़ी चोट है ये काम की चोट है। फिर बाबा ने बच्चों को ध्यान खिंचवाया कि बच्चों को त्रिकालदर्शी बाबा ने बनाया है। त्रिकालदर्शी कौन बच्चे बन सकते हैं? बाबा ने कहा कि पास्ट प्रेजेंट और जो फ्यूचर को जानते हैं वो त्रिकालदर्शी बच्चे हैं। जिसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे हो त्रिकालदर्शी बच्चे। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 26 जुलाई 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। आज का प्रश्न है अतिथि सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अतिंद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? इसका उत्तर है जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अतिंद्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितने ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। यहाँ तो बाबा के सब बच्चे साहूकार बच्चे ना, बहुत अच्छी तरह से ज्ञान को धारण करते हैं। तो बाबा ने कहा जो जितना ज्ञान को धारण करते हैं उतना वह साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो कौन है? वो शब्द तो कहना ही है बच्चों के लिए, तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे, कई तो बन चुके हैं, कई बन रहे हैं और बाबा बना रहे हैं। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। 500 प्रेजेंट चल रहा है वह पास्ट हो जाएगा, जो पास्ट है वो प्रेजेंट है, फिर प्रेजेंट क्या होगा, पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। बाबा हमेशा ध्यान खिंचवाते थे, संगम युग बोलते हैं लेकिन बाबा कहते नहीं, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट के गायन है वह अब प्रैक्टिकल में है। कौन सा पास्ट का गायन है, अतीन्द्रिय सुख का, तो बाबा कहते वो भी प्रैक्टिकल में है। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए, बच्चे जानते हैं संगम युग भी है और कलयुग का भी अंत है। बड़े बड़े संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया था, फिर अभी प्रेजेंट चल रहा है, अब फिर प्रेजेंट है, अब बाप आए हैं, वे यही फिर फ्यूचर होगा जो पास्ट हो गया। पहले पास्ट था, फिर प्रेजेंट है, फिर फ्यूचर बनेगा, फिर बाबा कहते पास्ट फिर प्रेजेंट बनेगा, अब फिर प्रेजेंट है, अब बाप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। बाप राजयोग सिखला रहे हैं कि क्यों सचिव में राज्य पद पाएंगे। अभी है संगम योग, ये बात तुम बच्चों के सिवाय और कोई भी जानते नहीं है। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो, ये है अति सहज। ऐसा राजयोग तो दुनिया में कोई भी नहीं सिखाता है। आराम से बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, कोई नीचे बैठा है, कोई टांग पसार के बैठा है। बाहर जो सिखाते योग तो उनको कैसे एक्यूरेट बैठना पड़ता है, तो बाबा कहते कितना सहज है। ये है अति सहज, जो बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो, ये है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक ही बात समझानी है, कौन सी, बाप को याद करो। जो विकर्म विनाश होंगे, जब बाबा को याद करेंगे तभी तो विकर्म विनाश होंगे ना। तो बाबा कहते जबकि विकर्म विनाश करने का समय है, कौन ऐसा होगा जो विकर्म विनाश ना करे। समय होता है, जैसे फल का समय होता है तो लोग कहते ना फलाने फल का समय, इसको जरूर लेना चाहिए, ये फलाना टाइम है, इसका ये लाभ लेना चाहिए। तो बाबा कहते विकर्म विनाश करने का समय है, तो कौन ऐसा होगा जो विकर्म विनाश नहीं करे। तो विकर्म विनाश करने हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु माया विकर्म करा देती है, समझते हैं चमाट लग गई है, ये हमसे कड़ी भूल हो गई है। जबकि बाप को बुलाती हैं, हे पतित पावन आओ, बाबा को बुलाया, आओ पावन बनाओ, फिर आने के बाद फिर कुछ न कुछ भूलें हो जाती हैं, माया भूल कराती है। जबकि बाप को बुलाती हैं, पतित पावन आओ, अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। बाबा के बने, बाबा कहा, बाबा की गोदी में आए, गोदी में बाबा के छत्र छाया में आए, फिर चलते चलते माया के पास चले जाते ना। तो बाबा कहते बाप का बनकर बाप की गोद में रहना है, बाप को छोड़ना नहीं है। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना है। सचिव में सब पवित्र थे, ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं वॉइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड, वह संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, क्योंकि हम क्रोधी नहीं बुलाते, क्रोधी कभी ये नहीं कहेंगे जब भक्ति में गायन करते तो क्या करते, हे पतित पावन आओ आकर के हमको पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते हैं। बाप फिर ड्रामा अनुसार, बाप फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अति इंद्रिय सुख रहना चाहिए, तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत कौन बन रहे हो बताओ, बहुत बहुत बाबा कहते साहूकार बन रहे, बहुत बहुत अमीर। तुम बच्चे अभी अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो, जिनकी जितनी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। वैसे तो बाबा के बच्चे संगम युग में भी इतने साहूकार हैं, अतीन्द्र सुख में खेलते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम साहूकार बन रहे हो नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ भी करते हैं वो सो फ्यूचर नई दुनिया के लिए। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने, हू बहू कैसे करते हैं बाबा कहते जरा भी अंतर नहीं पड़ सकता, हू बहू कलप पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे नेचुरल क्लैमिटीज भी होनी है, अर्थ क्विक हुई और खत्म। बाबा ने पहले ही बताया था भारत में क्या होगा, ज्यादा अर्थक्वेक और नेचुरल क्लैमिटीज होंगे। बाबा कहते देखो क्या होते, एक अर्थक्वेक छोटी सी होती है कितने लोग मर जाते हैं, अर्थक्वेक हुई और खत्म, भारत में कितने अर्थक्वेक होंगे। हम तो कहते हैं ये तो होना ही है, ये नेचुरल क्लैमिटीज है, कहाँ कहाँ से आती रहती है, कभी कुछ होता है। बाबा कहते तो पता है ना ड्रामा में है, हम तो कहते हैं ये तो होना ही है, कलप पहले भी हुआ है। बाबा बच्चों को पक्का करा रहे ना, कभी कोई इंसिडेंट होता है तो बच्चे सोचते ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, बाबा से पूछो ये क्यों हुआ। अरे बाबा कहते मैंने पहले ही कह दिया होना ही है, कलप पहले भी हुआ ही था, कलप पहले भी हुआ है। तब तो कहते हैं सोनी द्वारका नीचे चली गई है, बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले ये नॉलेज ली थी, इसमें जरा भी फर्क नहीं है। जितनी नॉलेज धारण किया, जितना पुरुषार्थ किया, तो बाबा कहते जरा भी फर्क नहीं है। बाबा 5000 वर्ष पहले बच्चों को क्या देने आए, तो बाबा कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमको वर्षा देने आए, 5000 वर्ष पहले भी हमने बाबा से वर्षा लिया था, हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया। गिनती कर सकते हो कितनी बार बाबा से वर्षा लिया, कोई गिनती नहीं। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उसकी गिनती नहीं हो सकती है। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो फिर फकीर बनते हो, बाबा हमेशा कई बार कहते दिन में अमीर और रात में फकीर, फिर फकीर बनते हो। इस समय पूरा भारत ही फकीर है, पहले था, अभी तो भारत बहुत अच्छा बनता जा रहा है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते हैं, तुम क्या लिखेंगे ड्रामा अनुसार, पहले भारत अमीर था स्वर्ग था अभी नरक है फिर बनेगा, लेकिन वो नहीं लिखते हैं, वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते हैं, उनका प्लान भी अपना है। वो क्या प्लान बनाते, 5 साल 10 साल में ये कर देंगे, इसी साल तक भारत के अंदर ये उपलब्धियां हो जाएंगी, वो तो कर ही रहे हो भी रहा है, लेकिन ड्रामा अनुसार कुछ न कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता ना, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहती हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले मौफिक कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं, श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना। अब शिव शक्ति नाम किसका, बहनों का है किसका है, है? शिव शक्ति बहने हाथ खड़ा करो। अच्छा, और भाई क्या है? शिव शक्ति पांडव सेना, बोलो डबल है आपका, उनका शिव शक्ति आपका डबल हो गया, शिव शक्ति पांडव सेना। तो तुम शिव शक्तियां देवियां हो जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम हो देवियां जो फिर विश्व पर ही राज्य पाती, तुम्हें ही वही देवियां हो जो विश्व पर राज्य पाती हो। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा है, कितनी पूजा करते हैं, लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही, जैसे बाप ही एक शिव है। तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी भी पूजा होती है। अपनी पूजा को याद करो, जब द्वापर में आएंगे तो तुम्हारी पूजा कौन करेगा, कौन करेगा आपकी पूजा, बताओ भाई बताओ कौन करेगा आपकी पूजा, कौन करेगा आपकी पूजा? पहले खुद शुरू करोगे फिर भगत करेंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो, तुम्हारी पूजा होती है, अनेक देवियां हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि वह हुई हेड, महाराजा महारानी मिलकर महालक्ष्मी कह देते हैं, उनमें दोनों आ जाते हैं। हम भी तो महालक्ष्मी की पूजा करते थे, ब्रह्मा बाबा बता रहे हम भी तो करते थे, बच्चों ने भी की है। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे कि महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते, थोड़ा धन मिल गया, समय लिया कि महालक्ष्मी की कृपा हुई है, फिर हर वर्ष पूजा करते हैं। कभी कभी नहीं मिलेगा तो कहेंगे महालक्ष्मी नाराज हो गई है, फिर पूजा करेंगे, फिर ज्यादा करेंगे। तो बाबा कहती हैं बस हर वर्ष पूजा करते हैं। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं, देवी से क्या मांगे? बाकी महालक्ष्मी से धन मांगा, बाकी देवियों से क्या मांगे? तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाले हो। महालक्ष्मी से धन, संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुम देवियां हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो जिससे सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, बीमारी होती है कुछ प्रॉब्लम होती है तो देवियों के पास जाते हैं और उनको कहते ठीक कर दो। शिव बाबा के पास जाते हैं, वहाँ बाबा के पास तो कुछ और मांगते हैं, बाबा फिर क्या कहते हैं? बाबा बच्चों को भी कहते हैं कि मैं कोई इन बातों के लिए नहीं आई, ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम्हें चुक तो करना है। तो बाबा कहते हैं बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां है ना, तुम हो संगम युग की कौन, शिव शक्ति देवियां। आज बाबा ने क्या कहा, संगम युग की शिव शक्ति आगे देवियां, आज याद रहेगा, संगम युग की शिव शक्ति देवियां। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो, बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं, महालक्ष्मी भी दिखाते हैं। वरदान देने वाले कौन है, बाप भी है, बच्चे भी है और महालक्ष्मी भी दिखाते। नारायण को तो गुप्त कर देते, नारायण से कभी वरदान ही नहीं मांगते, उसकी पूजा करेंगे वरदान नहीं मांगते। लक्ष्मी नारायण से मांगेंगे, लेकिन अकेले नारायण से नहीं मांगते हैं। तो बाबा जी के नारायण को गुप्त कर देते हैं, बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। अब ये जो बाबा ने बच्चे बनाए, बाबा के हम बच्चे बने, तो बाबा बच्चों को कहां से कहां ऊंचा चढ़ा दिया। नहीं तो दुनिया में कौन ऐसा था जो बच्चों को इतना ऊंच देवियां बनाए। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाते। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं, लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बना। वो लोग तो थोड़ा धन मांगते, लेकिन बाबा क्या करते, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अब क्या है, अब कंगाल हैं। विश्व के मालिक के बीच में कंगाल है, वास्तव में इतने कंगाल नहीं है, अब कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है, पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। ये भी कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले हुआ था, अभी भी हुआ है। बाबा कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद चक्र फिरता ही रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण राज्य है, भारत कंगाल हो गया था, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। जब से बाबा आए, बाबा कहते क्यों कंगाल हुआ, क्योंकि रावण राज्य है, रावण राज्य है। कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर, बाबा के टाइम पर लास्ट नंबर था, और अभी तो हाईएस्ट पोजीशन पे जा रहा है, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए, हिसाब है ना। धीरे से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाए। नहीं तो कई बार बहस करते हैं, पूछते रहते ना, तो बाबा कहते बच्चों को क्या करना है, विचार सागर मंथन करो, एक एक बात क्लियर होती जाएगी। तो बाबा कहती हैं धीरे से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं, कितना प्यार से बाबा समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी मीठी मीठी बातें हैं, अभी तो तुम सारी सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर सबक लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए। स्कूल में पढ़ाया, फिर होमवर्क देते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। तो बाबा कहते हैं घर में पढ़ने के लिए भी तो देते ना, टीचर लेसन सबक देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं, दिन में भल धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है, अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती। दिन भर तो कई काम होते ना, तो बाबा कहते सारा दिन अपना कारोबार करो, लेकिन अमृत वेले ही पढ़ाई करो, अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, उसमें उठकर बाप को प्यार से याद करो। कई बच्चे ऐसे हैं 2 बजे उठ जाते हैं, बाबा को याद किया, साथ साथ झुटके भी मारते रहेंगे, नेमी बच्चे बन जाते हैं, कहते हमने 2 बजे उठ करके बाबा को याद, वो तो ठीक है, लेकिन दिन भर सुस्ती करते हैं, इसलिए बाबा के जो बैलेंस भी रखना है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती, सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम अच्छा है, उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है, रावण को जलाती है, परंतु इसका अर्थ कुछ भी नहीं जानते हैं। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रसम चली आई है। ड्रामा अनुसार ये भी नूंद है, रावण को मारते आए, पहले मारेंगे फिर जलाएंगे, ये भी एक परंपरा चली आई है। रावण को मारते आए हैं, परंतु रावण क्या चीज है वो तो जानते नहीं। रावण को मारते आए हैं परंतु क्या हुआ, मरता ही नहीं है। हर साल मारते हैं, जलाते हैं, और हर साल रावण जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, मरता ही नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है, परंतु मरता ही नहीं है। अभी तुम बच्ची जानते हैं ये रावण को जलाना बंद कब होगा, रावण को जलाना बंद कब होगा, सतयुग में। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनते हो, तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है, बाप को न जानने के कारण सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उसको भी नहीं जानते। दुनिया में लोग भगवान को पुकारते हैं, याद करते हैं, आओ वो कहते रहते हैं, लेकिन जब आता है तो मानते नहीं है और वो पुकारते रहते हैं। बाबा की तो जो इतनी देता है उसको भी नहीं जानते हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते। ये भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी है। प्रार्थना जरूर करेंगे, पुकारेंगे जरूर, मंदिर में जाएंगे, अपने को पतित कहेंगे, लेकिन उनको कहो कि तुम तमो प्रधान हो, तमो सुनेंगे नहीं। तो बाबा कहते परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी है। बाप भी कहते हैं इस समय सारा झाड़ जल जड़ी भूत अवस्था को पाया है, एक भी सतो प्रधान ने, पूरे झाड़ के अंदर एक भी सतो प्रधान ने बन रहे हैं, लेकिन एक भी कंप्लीट नहीं है। सतो प्रधान होते ही हैं शांति धाम और सुख धाम में, अभी है तमो प्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते। बाबा क्या करते हैं, बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते, और बच्चे क्या करते हैं, जाकर के कुंभकर्ण को क्या करते हैं, अज्ञान नींद से जगाते हैं ना। तो बाबा ने बताते हैं बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते, तुम फिर औरों को जगाते हो। आजकल जो सेवा का एक साधन बना है ना, जगह जगह कुंभकर्ण ले जाते हैं और उसके कारण कई बच्चे इकट्ठे हो जाते और बच्चों को पक्का ही हो जाता कुंभकर्ण की बात। माँ भी बच्चों को कहेगी कुंभकर्ण मत बनना, और बच्चे फिर माँ बाप को कहते रहते हैं। तो एक तो जैसे उनको थोड़ा ज्ञान भी मिलता है, थोड़ी प्रेरणा भी मिलती है, एक साधन भी मिल जाता है इंजॉय करने का। तो बाबा कहते हैं बाप भी आकर तुम बच्चों को ज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो, जागते रहते हो, जा खुद भी जागते हैं औरों को भी जगाते रहते हो। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं ना कि रोशनी में आ जाए, जिंदगी भर अंधकार में रहा उस समय तो दीपक जलाया नहीं, मरने के टाइम जब आत्मा चली गई तब दीपक जलाते हैं, सोचते रोशनी में रहे। चलो शुभ भावना तो है लेकिन वास्तव में जानते नहीं है ना। तो जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब ये घोर अंधियार, अब क्या है, अब ये है घोर अंधियारा, आत्मा वापिस अपने घर जा ना सके। भल दिन होती है कि दुख से छूटे, परंतु एक भी दुख से छूट नहीं सकते हैं। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी, क्या निशानी होगी, वह ज्ञान रत्नों का दान किए बिना रह नहीं सकते। निशानी होगी, ज्ञान रत्न जमा करते जाएंगे और दान किए बिना रह नहीं सकते। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, वह ज्ञान रत्नों का दान किए बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते, पुरुषोत्तम मास होता है, कितना दान पुण्य करते, तो जिनको ये भी पक्का रहेगा ना, वो दान करते रहेंगे। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें भी ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये भी समझते हो, स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है, श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे। तो बाबा कहते, बाबा ही तो पढ़ा रहे हैं ना। ये भी समझते हो, स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है, श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर तो पुनर्जन्म लेते आए हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है। बाबा कहते हैं पहले क्या थे, अभी क्या है, फिर क्या बनेंगे। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज समझाया, तुम क्या बनते हो, तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, और कोई त्रिकालदर्शी, तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकता सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंच से ऊंच भगवान ही गाया हुआ है, वही रचयिता है, हेवनली गॉड फादर, अक्षर बड़ा क्लियर है, रचयिता है किसकी, हेवन की, हेवनली गॉड फादर, अक्षर बड़ा क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला, हेवनली गॉड फादर अर्थात हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए, क्या किया, ये कुछ भी जानते नहीं है, जयंती के अर्थ का भी पता नहीं। शिव जयंती शब्द कहते हैं, शिवरात्रि कहें, शिव जयंती कहें, लेकिन बाबा कहते हैं उसका अर्थ क्या है, वे अर्थ भी कुछ नहीं जानते हैं, जयंती के अर्थ का भी पता नहीं। तो फिर मना करके क्या करेंगे, किसी चीज का अर्थ नहीं है, करते रहेंगे। तो बाबा कहते फिर मना कर क्या करेंगे, ये भी ड्रामा में सब है। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कभी पूरे कल्प में ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानेंगे, लेकिन संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कभी नहीं। फिर जब बाबा आएगा तब ही जानेंगे, पक्का करा रहे, बाबा आएगा सुनाएगा तब ही जाएंगे, फिर जब बाबा आएगा तब ही जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है, ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भगत लोग भीड़ में धक्का खाने जाते, भक्ति में कितना धक्का खाते, कुछ भी हो जाए, कितने कष्ट होते हैं तो भी सहन करते हैं, और फिर क्या है, बाबा के घर में इतने सुख मिलते हैं, और फिर भी कहीं ये नहीं हुआ वो नहीं, भक्ति में धक्के खाए तब याद नहीं है, यहाँ जरा सा कुछ हो तो फिर महसूस करते हैं। बाबा कहते देखो बच्चों की अवस्था भी कैसी हो गई है। तो बाबा क्या कहते हैं, भक्ति मारे में तो उनसे कुछ मिलता नहीं, कितने भगत लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तो तुमको उनसे छुड़ा दिया है, अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम युग पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, हम ये कैसे बने हैं। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ करते करते बच्चे कभी अगर फेल भी हो पड़ो तो बाबा को समाचार दो। बाबा के तो दिल शिकस्त नहीं बनो, कुछ भी हो जाते हैं तो बाबा को बताओ, तो बाबा गाइड करेंगे, बाबा मदद करेंगे। तो बाबा क्या बता रहे हैं, पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर फेल भी हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे, बाबा इशारा देंगे, सावधानी देंगे, शक्ति देंगे, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। पर कभी भी फेलियर हो बैठ नहीं जाए, कोई भी बात हो जाती है, कोई ऐसा कर्म हो जाता है तो बाबा कहते बाबा को बता करके फिर से पुरुषार्थ करो, फेलियर होकर बैठ नहीं जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना, सबसे बड़ा सर्जन कौन है, बाबा है ना। तो बाबा कहते सर्जन तो बैठा है ना, बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने में कितना फर्क है। काम विकार है 5वीं मंजिल, हाँ सबसे टॉप, वहां से गिरेंगे तो क्या होगा, चकनाचूर हो जाएंगे। और दूसरी मंजिल 1 से गिरे तो फिर थोड़ा फर्क हो जाता है। 5 विकार है 5 मंजिल, और इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, उसने ही तो तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर ही बनाएंगे ना। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संगम युग है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर झाड़ पूरा यहाँ बढ़ेगा। बाबा ने बीज डाला, कलम लगाया और झाड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, बाबा ने पहले से कह दिया था, बाबा के टाइम पर तो बहुत थोड़े से थे, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे। बाबा जब अव्यक्त हुए तो बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, और अभी भी तो बच्चे बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते जा रहे ना। तो बाबा कहते फिर और बढ़ेंगे, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा बाबा क्या कहते हैं, अच्छा मुरली नहीं मिलती है, उस समय क्या था, पोस्ट जाती थी, पोस्ट भेजते थे, और जब बरसात का मौसम होता था, बहुत बारिश है, तो उस समय कई कई दिन फ्रेश मुरली नहीं पहुंचते थे। तो बाबा कहते अच्छा, कई बार तो क्या होता था, कोई दूसरे देश में भेजते हैं, दूर जगह है, आसाम की तरफ है, तो मुरली पहुंचती नहीं थी 8-10 दिन, बरसात के कारण ट्रेन रुकी है, तो कहाँ जाएगा, कैसे पहुंचेगा। तो बाबा को बताते थे बाबा मुरली नहीं मिल रही, तो बाबा कहते थे क्या करूं, या तो योग करूं, या फिर जो पुरानी मुरली उसको रिवाइज करो, उसमें पुरानी मुरली रिवाइज करते थे। और अभी तो क्या है, कुछ भी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, रोज की फ्रेश मुरली मिलती है, कुछ भी हो जाए लेकिन रोज की रोज मुरली मिलती है ना, वही मुरली जो यहाँ चल रही है, वही मुरली सभी सेंटर्स पर चलती है, चाहे पोस्ट से देरी से आए। फिर भी बाबा कहते हैं अच्छा मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो, बुद्धि में ये पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है वही हू बहु चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अभी देही अभिमानी बनने का पूर्ण पुरुषार्थ करो। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अभी देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत। सबसे ज्यादा मेहनत किसमें लगती है? देही अभिमानी बनने में, क्यों बार बार देह में आने की अभ्यास है ना, इसी में है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना क्या है? बाबा कहते ये भी बहुत बड़ी भूल है। अनेक भूले करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूल क्या है? बाप को भूलना। बाप को भूलना ये भी बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से बाप को भूलते, बाप को भूलना बहुत बड़ी बात है। ये भूल क्यों होती है? देह अभिमान में आने से बाप को भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी। बाबा युक्ति भी बताते हैं, बाबा पुरुषार्थ भी कराते हैं, और बाबा को पता है ये जल्दी भी नहीं होगा, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, हिम्मत नहीं हारना है, पुरुषार्थ करते चलना है। तो बाबा कहते हैं बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है, ये अवस्था जल्दी नहीं होगी। अंत में जब ये अवस्था होगी तब विनाश होगा। तो बाबा कहते जब अंत में ये अवस्था होगी तो कर्मातीत अवस्था होगी और फिर विनाश होगा। अंत में जब ये अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो अपवित्र शरीर में उसको रहना भी मुश्किल होता है। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर छूट जाएगा, ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबर वन कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। आगे थोड़ी रिहर्सल होती थी, अभी क्या हो रहा है, रिहर्सल में भी अभी स्पीड बढ़ती जा रही। क्यों? क्योंकि बाबा के बच्चे अभी तैयार नहीं है, तो इसलिए बाबा कहते हैं तब तक रिहर्सल होती रहेगी, जब बच्चे तैयार हो जाएंगे तब परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह जरूर करना है। फिर से पढ़ती हूँ, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेली उठ विचार सागर मंथन करना है। श्री मत पर शरीर निर्वाह करते बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। दूसरा, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है, सर्जन को सब सुनाना है, विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं, उनके नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन उसमें सबसे अखंड स्वरूप तो आप हो। क्या नाम हो गया? अखंडानंद है। बाबा कहते लेकिन सबसे अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सिर्फ संग दोष में ना आओ। संग दोष के कारण आनंद खत्म हो जाता ना, डावाडोल होता है। तो बाबा कहते हैं आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सिर्फ संग दोष में ना आओ। दूसरों के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो। तो इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। स्लोगन, दिव्य बुद्धि साइलेंस की शक्ति का आधार है। दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। अवेतिशाना, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। ये जो हेडिंग चल रहा है ना, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को हैंडल कर सकता है, वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। इसलिए स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो तो यही है यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। यही है यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। आज 26 तारीख है, हमारी प्यारी दीदी जी की अवित्य दिवस के पहले से ही दीदी की जो विशेषताएं सुना रहे हैं। 28 तारीख को दादी जी का, दीदी जी का, दीदी मनमोहिनी जी का अवित्य दिवस है। उस दिन तो प्यारे बाबा को भोग भी स्वीकार कराया जाता है, वो प्रोग्राम बाद में सुनाया जाएगा। आज 26 तारीख है दीदी जी की विशेषता, सदा श्री मत पर अडिग। बाबा ने जो श्री मत दी है, दीदी कभी भी उसमें अपने मन मत मिक्स नहीं करते थे। तो सदा श्री मत पर अडिग, जिम्मेवारी निभाते भी डबल लाइट। बाबा की श्रीमत हम बच्चों को संपन्न बनाने के लिए, दीदी हमेशा कहती थी बाबा ने जो हर एक बच्चे को मत दिए, श्रीमत दिए, वो संपन्न बनाने के लिए। ऐसा नहीं है इसको ये कहा मेरे को क्यों ऐसा कहा। तो दीदी कहती थी बाबा की श्रीमत हम बच्चों को संपन्न बनाने के लिए। श्रीमत पर चलने का आधार है एक बल एक भरोसा। बाबा की हर श्रीमत को हम एक्ट में तभी ला सकेंगे जब पूरा फेथ होगा। जिसमें फेथ होगा उसकी राय में कभी भी अपनी राय मिक्स नहीं की जाती। एक बाबा की राय पर चलने से हम सदा हल्के रहेंगे। अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को दे दो। कोई कोई के मन में ये संकल्प चलता है बाबा तो सब साकार में नहीं है, लेकिन ये भी संशय होता ना, बाबा साकार में नहीं है ये है, तो दीदी कहती थी ये भी संशय, बाबा ने तो साथ है, बाबा ने तो श्रीमद दी है, कोई कहता है बाबा साकार में नहीं है, लेकिन ये भी संशय, जब तक स्थापना का कार्य, जब तक स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तब तक बाबा अपने बच्चों की पालना अव्यक्त रूप से कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा बट्टी के, आज रात्रि 8:30 बजे मेडिटेशन हॉल में जबलपुर से डॉक्टर आए हुए, डॉक्टर तुषार विश्वास, न्यूरोपैथी ट्रीटमेंट और डाइट और एक्सरसाइज की विस्तृत जानकारी देंगे। आज रात्रि 8:30 बजे मेडिटेशन हॉल में डॉक्टर तुषार न्यूरोपैथी ट्रीटमेंट, डाइट और एक्सरसाइज की विस्तार में जानकारी देंगे, इसलिए सब भाई बहने 8:30 बजे तक मेडिटेशन हॉल में पहुंचेंगे। बहुत जरूरी, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक को कुछ ना कुछ तो शरीर को लगा ही रहता है, थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं तो अपने आप भी फायदा कर सकते हैं। अच्छा बट्टी के भाई बहने जो आज जा रहे हैं हाथ खड़ा करें, वैसे तो जा रहे हैं वो अभी नीचे ही होंगे, जो आज सुबह जा रहे वो तो नीचे होंगे, जो आज दोपहर को जा रहे हैं वो हाथ खड़ा करें। अच्छा जो शाम को जा रहे हैं वो कोई, जो कल जा रहे हैं, कल वाले 2-4 हैं। अच्छा परसों तो नहीं जाने, कल सब जा रहे हैं ना, कोई रुक तो नहीं रहा परसों के लिए, ठीक है। कल कितने बजे जाएंगे, 10 बजे के अंदर, ठीक है, जो कल जा रहे हैं वो अपना टाइम बता देना। अच्छा ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे, ये उड़ीसा वालों को भी मैं समझती पहला ही मौका मिला नवरंगपुर वालों को यहाँ भट्टी करने का, बहुत अच्छे बाबा के लाडले बच्चे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से वह इन्होंने अनुभव किए और बाबा के साथ के अनुभव किए, ठीक है ना, सब सब भट्टी वाले खुश हर तरह से, बाबा ने भरपूर किया ना, बहुत कुछ खजाना लेके जा रहे हो तो क्या बन के जा रहे, अमीर साहूकार है, अमीर भी है और साहूकार तो भविष्य में बनेंगे, अभी बहुत अमीर बन के जा रहे हैं। अच्छा ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।